ऑप्शन थी 19 नवंबर 1984। तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले, सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारी विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले, ऐसे भी बच्चे देखे। लेकिन शमशानी उमंग उत्साह व शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग वृत्ति, इसी लहर में नहीं चलना, सदा परिवर्तन, परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक स्मृति में रहो, परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिवान को चलावे, मनुष्य आत्माओं का शमशानी वैराग अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे, यह पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं, समय रचना है, मास्टर रचता को आगे बढ़ावे, यह मास्टर रचता की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं, समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है, समझा? समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ। क्वेश्चन तो बहुतों का है कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो, यह है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि यह क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए ना? ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना, दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो, समझा? फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए, परिस्थितियां क्या भी हो, लेकिन ड्रामा ने फिर भी मिलन मेला मेला मना लिया, और ही लकी हो गए ना जो पहुंच तो गए। खुश हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो पहुंच गए, भलाए। मधुबन की रौनक, आप सब बच्चे हो, मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंचा, सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी है। 19 नवंबर 1984। तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले, और पहले कौन थे और दूसरे कौन थे? तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले। मुरली है 19 नवंबर 1984, 31 अक्टूबर 1984, 9:20 सुबह। क्या हुआ था? बियंत सिंह और सतवंत सिंह दो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, मार दिया था 31 अक्टूबर सुबह 9:20। 1 नवंबर से लेके तो 4 नवंबर तक दिल्ली में, और विशेष दिल्ली में और सारे भारत में सिख राइट्स, लगभग 8,000 लोग सिख मारे गए, अधिक से अधिक दिल्ली में भयंकर दंगे हुए, बहुत कुछ हुआ, संपूर्ण हलचल की अवस्था थी। उसके बाद चलने वाली ये मुरली है जिसमें बाबा ने इंदिरा गांधी का नाम लिया है। इस मुरली में ये मुरली वैराग के ऊपर है। बाबा ने कहा वो टीवी तो आपने देखा, इंदिरा गांधी का टीवी देखा, पर बाप ने भी टीवी देखा, और बाप ने टीवी में क्या देखा उसका वर्णन से यहाँ है। हलचल की परिस्थिति समाचार के रूप से सुनना, जानने के रूप से सुनना, नॉलेज के लिए सुनना वो और बात है, परंतु सुनते हुए ये सोचना ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये हलचल है। तो आज बाप दादा बच्चों की टीवी देख रहे थे, उसमें बच्चे कितने अचल रहे वो देखा। सबसे पहले बच्चे थे जो कि अलबेले थे, हलचल हुई, उठे, चादर ओढ़ी, चादर नीचे की, देखा और देख के उन्होंने सोचा कि ये रिहर्सल फाइनल होने वाला है, और फिर चादर ओढ़कर सो गए। ये पहले बच्चे थे। दूसरे थे आलस्यवादी, उन्होंने भी चादर नीचे की, सोए थे आलस की नींद में और देखा, थोड़ी देर देखते रहे, फिर दूसरों को देखा, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे भी हलचल में हैं, जो पुराने हैं उनको देखा और फिर सोचा कि हम भी जब परिस्थिति ज्यादा हो जाएगी तब अचल हो जाएंगे। तो दूसरे में उनका वर्णन किया जो कि आलस्य वाले थे, और तीसरा यहाँ बाबा वर्णन कर रहे हलचल को देख अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारे विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, इतना हलचल का वातावरण भारत में, संपूर्ण भारत में, केवल दिल्ली तक ही नहीं रहा, धीरे धीरे सारे भारत में पहुंचा। सरकारी आंकड़े थे 3,000, परंतु अन्य अन्य सूत्र या कहते हैं कि 8,000 से भी ज्यादा लोग, बहुत सारे अत्याचार, सब कुछ हुआ, लूटपाट से लेकर स्त्रियों पर अत्याचार से लेकर सब कुछ हुआ था। क्यों हुआ था और क्यों मार दिया था, ये दूसरा प्रश्न है, जो कि सतवंत सिंह तो उसका बहुत चहता था, इंदिरा गांधी का, एक सामने से आया, एक पीछे से आया, एक ने 3 गोलियां और दूसरे ने 30, दोनों ने मार दिया। When a big tree falls, the earth shakes, राजीव गांधी ने कहा था, जब बहुत बड़ा वृक्ष गिरता है धरती पर तो धरती कपती है। इस पर भी बहुत वाद विवाद है। जब when a big tree falls, the earth shakes, रात में सुबह से ही दंगे चालू हुए, और उसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स भी है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। परंतु जिस तरह से वो सब हुआ 4 दिन में, चारों दिल्ली से चालू होकर सारे भारत में भयंकर हलचल थी उस समय। बाबा क्या कह रहे, सारे विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले तुम हो, शांति देने वाले तुम हो, शक्ति देने वाले तुम हो, साहस रखने वाले तुम हो, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले तुम हो। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, वहां पर इंसर्जेंसी अर्थात वो क्या नाम था उसका, भिंडरांवाला जो उसके अंदर छिपा था, भिंडरांवाला अकाली दल, भिंडरांवाला निरंकारी ग्रुप, बहुत सारी चीजें है वहां पर। तो ये जैसे कि मतलब उनकी जो भावनाएं हैं उसको जबरदस्त ठेस पहुंची थी, उसकी वजह से वो दोनों ने उसको मारा। एक को तो पकड़कर वहीं पर उसके दूसरे बॉडीगार्ड ने मार दिया, और दूसरा जो था सतवंत उसको तो वहीं मार दिया, शायद बीएनत सिंह को बाद में 87 में फांसी की सजा हुई और एक दूसरे साथी के साथ। तो ऐसे भी बच्चे देखे, कैसे बच्चे, जो हलचल को देख अचल रहने वाले थे उस समय। लेकिन शमशानी उमंग उत्साह व शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग वृत्ति, इसी लहर में नहीं चलना, परंतु ऐसी हलचल तो बहुत आएगी। और जब हलचल होती है तब क्या होता है? शमशानी उमंग उत्साह आता है। क्या होता है तब? शमशानी तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। क्या होता है तब? थोड़े समय के लिए कमजोरियों से वैराग आता है। इसी लहर में नहीं चलना, फिर किस लहर में चलना? सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ाए, ऐसी घटनाएं तो संसार में होती रहेगी। घटना हुई और तब जागरण हुआ, तब जागना, ये एक अवस्था है। वह वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिवान को चलाए, मनुष्य आत्माओं को शमशानी वैराग अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे, यह पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं। पूर्वज आत्माओं का यह कर्म नहीं कि थोड़े समय के लिए आत्माओं को वैराग दिला दे या अल्पकाल के लिए बेहद के वैरागी बना दे। समय रचना है, मास्टर रचता को आगे बढ़ावे, यह मास्टर रचता की कमजोरी है। समय क्या है? रचना। हम है मास्टर रचता, हम मास्टर रचताओं को समय आगे बढ़ाए, ये क्या हुआ? मास्टर रचता की कमजोरी। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है, समझा? समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं हो। समय हमको हिलाए, परिस्थिति आए तब हम वैरागी बने, तब उमंग उत्साह आए, तब तीव्र पुरुषार्थी बने, या दूसरों को हद का वैराग्य दिलाए, ये पूर्वज आत्माओं के कर्तव्य नहीं। लेकिन स्वयं आगे बढ़, समय को समीप लाओ। क्या करो? स्वयं आगे बढ़, समय को समीप लाओ। क्वेश्चन तो बहुतों का है कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो। क्वेश्चन को क्या करो? फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो। अब क्या होगा? अब ये हो गया, अब आगे क्या होगा? भारत का क्या होगा? कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? नेक्स्ट क्या होगा? बहुत सारी हलचल का समय था वो। अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो, यह है फुल स्टॉप। इस हलचल का एक कारण ये भी सूक्ष्म कारण था जिस वजह से ये वाद विवाद खड़ा हुआ है, धर्म। क्योंकि सिख कहता है कि केवल 10 ही गुरु है, 10 के आगे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि अगला कोई गुरु नहीं होगा। परंतु एक दूसरा जो संप्रदाय है, क्या नाम है उसका? निरंकारी। उसका कहना है कि नहीं, मनुष्य भी हो सकता है, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया था कि 11वां जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, मनुष्य नहीं हो सकता है कोई भी। परंतु ये जो दूसरे संप्रदाय आए थे उनका कहना था कि नहीं, मनुष्य भी हो सकता था, है निरंकारी ना या निराकारी, निहंग, ऐसे दो तीन जो मुख्य जो था मतभेद जो था वृंदा बिंट्रा वाला का, इसी बात के लिए था। वहां से सब चालू हुआ। सूक्ष्म जड़े कितनी है उसकी, इसके लिए इतने सारे हथियार और वो सब लेकर अकाल तख्त में वो वहां अंदर था छुप के। उसी फायरिंग में उसकी डेथ भी हो गई थी वहीं पर, बहुत पहले, वो तो जून में, ये हो रहा है अक्टूबर में हो रहा है ये। हाँ, 88 में तो बहुत बात की बात है, ये तो 84 में उसका बदला लिया वो लोगों ने, पर जड़ उसकी कितनी सूक्ष्म है अगर देखा जाए तो। ऐसे समय पर क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्या करना है? मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है? उस सेवा में लग जाओ। क्या करना है और मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है? जब हलचल हो जाए तो मेरा कर्तव्य क्या है? ऐसी हलचल में यदि कुछ कर्तव्य करना है तो उसके लिए कितनी तैयारी लगेगी। संसार में इतनी भयंकर हलचल, तब तो इतना न्यूज चैनल्स में इतना नहीं था। वो इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 10:00 में एम्स में, और 10 घंटे के बाद सलमा सुल्तान उसने ये न्यूज जिस तरह से बताई थी उसका वीडियो भी है। और अगर यही न्यूज अभी अगर कोई बताता तो कितना वो सनसनीखेज करके बताए होते। उसने सिंपल अपना जैसा बैठ के चुपचाप बता दिया, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बस फुल स्टॉप। अभी इधर से म्यूजिक, उधर से म्यूजिक, यहाँ से म्यूजिक, 6 महीने तक वहां। इससे ये भी पता चलता है कि न्यूज चैनल कैसे ट्रेवल किया है। न्यूज चैनल्स ने, उसने जिस तरह से न्यूज ब्रेक की थी फर्स्ट दूरदर्शन पर, वो बिल्कुल अनासक्त भाव से वैसे न्यूज वाले नहीं करते। अभी बस बता दिया, वो भी कई घंटों के बाद, तुरंत नहीं बताया, 10 घंटे लगभग वो न्यूज ब्रेक की थी। और उसके बाद में जो भयंकर हलचल हुई, कितने सिख लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, फटाफट घुस कहीं कहीं जाके बाल कटवाए किसी ने अपने आप को, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ। हाँ, बहुत कुछ हुआ। उतने कितने सारे तो ये हो गए, कितने 10,000, कितने हजार लोग जिसको क्या कहते हैं, नहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट, स्थानांतरण। तो लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है? ऐसा जब हलचल का, वो तो एक था, बाबा ने उसमें कहा है, ऐसे समय में देह रूपी घर से बेघर होने का अभ्यास करो। इस दृश्य को देखते हुए कल्प पहले की नॉलेज रूप की स्मृति स्वरूप से दृश्य को देखो। जो तुमने देखा उस टीवी में, इंदिरा गांधी के टीवी में तुमने जो देखा, उसको कल्प पहले के नॉलेज स्वरूप की स्मृति में स्थित रहकर उसको देखो। ये कुछ भी नहीं है। मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है? जैसे उदाहरण दिया, एक आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, कितने लोगों को जिंदा जला दिया, सिख को, जहां जहां सिख दिखे पकड़ पकड़ के उनको मारा गया, जिंदा जलाया गया, स्त्रियों पर दुष्कर्म हुए, सब कुछ हुआ। आग बुझाने वाले क्या करते हैं, आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए ना। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य क्या है, अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। ये क्यों हुआ, ये किसने किया, कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस था, बीजेपी था, कौन इसके पीछे है, किसका हाथ है, ये सब एक तरफ। करना क्या है, तुम पूर्वज हो, पूर्वज का कर्तव्य क्या है, तुम रूहानी सेवाधारी हो, रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य क्या है। दुनिया वालों को भी क्या हो, न्यारापन अनुभव, समझा। फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए ना, फिर भी पहुंच गए। 19 तारीख की मुरली, 4 तारीख तक तो भयंकर हंगामे चले, 1 से 4 तक, 4 दिन में। उसके बाद में पता नहीं कितनी कमिटी और कितने कमीशन खड़े कर दिए गए, अभी तक चल रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके वजह से हुआ या उसके वजह से हुआ, किस किस का हाथ था। फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए, इतनी हलचल होने के बाद भी पहुंच गए। परिस्थितियां क्या भी हो, ड्रामा ने फिर भी मिलन मेला मना लिया। क्या ड्रामा ने फिर भी क्या कर दिया, मिलन मेला मना लिया। और ही लकी हो गए ना, जो पहुंच तो गए। अभी अभी एक मुरली चली थी ना पिछले सीजन में, जिसमें बार बार एक ही बात कही थी बाबा ने, फिर भी पहुंच तो गए, फिर भी पहुंच तो गए, फिर तो आ तो गए, फिर भी मिलन तो मना ही लिया। जैसे कुछ हो रहा था फिर भी हो गया, अभी कुछ हो नहीं रहा था फिर भी बार 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 ये कितनी बार आया है। अभी एक मुरली चली ना लास्ट सीजन, फिर भी पहुंच तो गए, फिर भी आ तो गए, खुश तो हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो पहुंच गए, भले आए। मधुबन की रौनक, आप सब बच्चे हो, मधुबन का श्रृंगार, मधुबन में पहुंच गया, मधुबन से श्रृंगार जा रहा है, अगले संडे बोलो ना, ये यहां पहुंच गया वहां जा रहा है। सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, फिर कौन? मधुबन वाले बच्चे भी हैं। तो जब हलचल की परिस्थिति आई तब बाबा ने देखा टीवी खोलकर क्या क्या दिख रहा है, कोई आलस वाले, कोई अलबेलेपन वाले, कोई कोई अचल रहने वाले, सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और सेवा करना। कौन से प्लान सोचना आशीष भाई, आज की मुरली से? मंदिर के ट्रस्टियों को मिलो, कैसे? पहले तो मोटर में जाओ, वेश बदल के जाओ, बहुरूपी बन कर जाओ, टिप टॉप बन कर जाओ और युक्ति से समझाओ। मंदिर बहुत अच्छा है, आपके दर्शन करने आए हैं। टिप टॉप होकर जाओ, वेश बदल के जाओ, बहुरूपी बन कर जाओ, मोटर पर चढ़कर जाओ, चढ़कर मोटर पर चढ़कर जाओ और युक्ति से समझाओ। अभी थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। तो ये तो चलो दूसरी पॉइंट है, शमशानी वैराग, शमशानी उमंगोत्साह, शमशानी तीव्र पुरुषार्थ। इसको बदल कर क्या होना चाहिए? शाश्वत वैराग, शाश्वत तीव्र पुरुषार्थ और चिरंतन उमंग उत्साह। कैसे? वैराग को लाने को कहा है बाबा ने, वैराग कैसे लाए? वैराग को, वो वैराग नहीं चाहिए बाबा को, ये पूर्वज आत्माओं के कर्तव्य नहीं, मास्टर रचता को रचना चलाए, मास्टर रचता को समय परिवर्तन करे, परिस्थितियां परिवर्तन करे, ये मास्टर रचता की कमजोरी है। ये पूर्वज आत्माओं के कर्तव्य नहीं है कि दूसरी आत्माओं को अल्पकालीन वैराग दिलाए। तो कौन सा वैराग चाहिए सुधा माता, कौन सा वैराग चाहिए? बेहद का, सदाकाल का। कौन सा वैराग चाहिए? शाश्वत सदाकाल का, निरंतर। और तीन प्रकार के वैराग है, एक है मंद वैराग, एक है मध्यम वैराग, तीसरा है तीव्र वैराग। और दो प्रकार के वैराग है, एक है कारक वैराग, एक है विवेक युक्त वैराग। कारक अर्थात कोई कारण से हलचल हो गई, ये हो गया, इतने लोग मर गए, हम भी जाएंगे एक दिन, वैराग हमको भी जाना ही है। वो कोई कारण से, एक है विवेक जन्य, विवेक युक्त वैराग, वो एक वैराग है। वैराग्य और दो प्रकार के, एक परा वैराग, एक अपरा वैराग। अपरा अर्थात रिलेटिव, लोअर छोटा, अर्थात छोटा मोटा वैराग, ज्यादा उसमें ये नहीं है। एक है अपरा वैराग, अपरा वैराग अर्थात विषय आसक्ति वासनाएं संपूर्ण समाप्त हो गई है जिसमें। अब प्रश्न है कि वैराग को कैसे लाए, शाश्वत वैराग को, अपरा वैराग को, तीव्र वैराग को। बाबा ने कहा है कि शमशानी वैराग नहीं चाहिए, शमशानी उमंग उत्साह भी नहीं चाहिए और शमशानी तीव्र पुरुषार्थ नहीं चाहिए। कैसा पुरुषार्थ चाहिए? सतत निरंतर। तो क्या किया जाए जिससे कि गैर शमशानी वैराग हो जाए? निरंतर वैराग आ जाए, क्या किया जाए? बिंदु बिन क्या करे? बाबा ने इतनी बड़ी मुरली चलाई है, क्या करे? सबसे पहले तो वैराग अर्थात ना तो कुछ धारण करना है ना तो कुछ छोड़ना है, वो चित्त की अवस्था है, स्थिर अवस्था। वो कुछ छोड़ने का नाम वैराग नहीं है, क्योंकि जिस जिसने छोड़ा है वो उल्टे लटके हुए हैं, वो भी उसी का चिंतन कर रहे हैं हमेशा। जो हम बताते हैं ना त्रिकोण, तीन वाला त्रिकोण वाला, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक ऊपर बैठा है, एक यहां बैठा है गृहस्थी, ये इधर है त्यागी या वैरागी, बीच में वस्तु है। ये जो गृहस्थी है वो इसको चिपका हुआ है, ये जो है उसको अलग रीति से चिपका हुआ है, इसलिए चिपका हुआ है कि उसने उसको छोड़ा है। किसको छोड़ा? इस वस्तु को छोड़ा। वो वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, ये इसमें डूबा हुआ है, ये उससे दूर है, परंतु इस भाव से दूर है कि इसको मैंने छोड़ा है, और इसलिए वो भी उसी में बंधा हुआ है। तो किसी चीज को छोड़ने का नाम, भोजन को छोड़ने का नाम, वस्त्र को छोड़ने का नाम, या कोई भी वस्तु को छोड़ने का नाम, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये कोई भी चाहे या कोई भी चीज, वो छोड़ दिया अर्थात वैरागी, वैराग उसका नाम है ही नहीं। ये त्याग, ये गृहस्थी, ये सन्यासी, ये राग, ये विराग, ये राग और विराग दोनों ही बंधन है। ऊपर है इधर बैठा एक वीतराग, ऊपर बैठा है इधर जिसको बाबा कहते हैं बेहद का वैराग, वो वैराग चाहिए। वो जो वैराग है वो किसी भी चीज को छोड़ने का नाम नहीं है, वो तो आनंद की अवस्था है। उसमें ये नहीं है कि मैंने वो छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, क्योंकि छोड़ना ही बंधन है कहीं ना कहीं, वो छोड़ने में ही अहंकार भी है। उसको ज्ञान पूरा है परंतु वो इससे परे है। उसने इसलिए नहीं कि क्योंकि उसको कुछ ऐसा मिल गया है यहाँ पर जो बहुत बड़ा है, इसके लिए उसको छोड़ना भी क्या कहेंगे। उसको कुछ और ही मिल गया है, उसके लिए ये सारी चीजें उसके लिए व्यर्थ हो गई है। अब उसको ये संघर्ष नहीं, हाँ ये जो है बीच में कुछ खाने की चीज या कोई वस्तु है उसमें वो डूबा है, ये जो है वो उस चीज से डरता है कि वो दिख ना जाए, दिख गई तो फिर मुश्किल है, वो दिखनी नहीं चाहिए। एक सन्यासी था साधु जिसने अपना गृहस्थ छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। सन्यासी बन गया 30 साल के बाद खबर आई, 30 साल के बाद, 30 साल का सन्यस्त जीवन, 30 साल का वैरागी जीवन, 30 साल में कथाएं की, प्रवचन किए, शिष्य बनाए, सब कुछ किया। 30 साल के बाद एक दिन खबर आई कि उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया है। तो 30 साल के बाद उसने कहा अच्छा हुआ झंझट छूटी। मतलब मतलब क्या क्या ये वैराग है, क्या ये सन्यास है, क्या ये त्याग था? मतलब क्या अब तक उससे मिला भी नहीं, इतने साल उससे दूर था, परंतु कुछ था अंदर, तभी तो ऐसे महावाक्य उच्चारण किए कि झंझट छूटी। तो इसको वैराग, इसको त्याग नहीं कहते। त्याग बहुत सूक्ष्म है, वैराग बहुत सूक्ष्म है। मन की वह अवस्था है कि जिसमें वस्तु व्यर्थ हो गई है। जैसे हम यहां से अगर निकले और मार्केट में कोई अच्छी चीज बन रही है, कचौरी बन रही है, जलेबी बन रही है, तो हम ऐसा करते हैं, अरे उधर नहीं देखना, बिल्कुल हम नहीं देखेंगे उधर, हम तो यहां से निकल जाएंगे। करते हैं कि ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण, शायद ही कोई होगा ऐसा कि जिसके मुंह में पानी आ जाता है वो देखकर कि बिल्कुल उधर देखना ही नहीं है, बाबा ने मना किया है, बिल्कुल हम बाहर का नहीं खाते। ऐसा संघर्ष है क्या भोजन के बारे में? ये तो एक, उससे भी ऊपर नॉनवेज शायद पहले खाते होंगे और अभी छोड़ दिया, तो अभी ऐसा लगता है नहीं, परंतु बाबा ने मना किया, बिल्कुल नहीं, अलग हटाओ उसको। ये संघर्ष है या नहीं है? खत्म हो गया है। क्यों क्यों उसको बड़ा मिल गया? क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ हो चुका है, उसके लिए छूट गया है, व्यर्थ हो गया है। अब उसका वो यहां पे भी रख दिया जाए और कुछ भी कर दिया जाए तो भी उससे लेने की इच्छा ही नहीं है। अंदर से 1% 0.0% भी उसकी कामना नहीं है, इतना वो नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है। कुछ भी हो जाए, हम अगर खाना ही है तो बना के खाएंगे, और वो तो हमको लेना ही नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी सुगंध आ रही हो फिर भी नहीं लेंगे। ये रियल वैराग्य है। परंतु क्या ऐसा ही वैराग्य क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे हुआ है? नेचुरल अवस्था वैराग्य की। तो फिर से उसी प्रश्न के ऊपर, रियल वैराग्य कैसे लाए? 10 बातें बताओ। पहले तो विवेक से, ज्ञान से, समझ से, वस्तुओं को जानकर, उनके अनित्य स्वभाव को समझकर। संसार में जो भी वस्तु है सब अनित्य है, ये विवेक जन्य वैराग्य है। समझकर उसको, क्यों जबरदस्ती नहीं, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, जबरदस्ती अगर करो तो फिर से वो वापस आएगी, कुछ समय के बाद रिलैप्स होगा, फिर से याद आएगी उसकी कि छोड़ा तो था परंतु फिर से कोई ट्रिगर आ जाएगा, फिर से इच्छा होगी कि वो खाओ देखो करो, क्योंकि विवेक नहीं था, किसी ने कह दिया था इसलिए किया था, कहीं पढ़ लिया था इसलिए किया था, किसी मुरली में आ गया था इसलिए थोड़ा बहुत कर लिया था पर समझा नहीं था, किसी दूसरों ने किया था इसलिए हमने भी किया, उन्होंने छोड़ दिया हमने भी छोड़ दिया, क्यों छोड़ा वो नहीं पता, बस उन्होंने छोड़ा हमने भी छोड़ दिया। ये अच्छी बात है, छोड़ा चला, 6 मास चला, 6 साल चला, परंतु उसका आधार नहीं था कुछ, उसके हाथ पैर नहीं थे कुछ, सिर बस वो बीच में था, अधांतर लटक रहा था, तो फिर से उसमें, क्योंकि विवेक नहीं था। तो सबसे पहली विधि है वैराग्य को लाने की, विवेक, ज्ञान, समझ, विजडम। दूसरा, फायदा नुकसान। नुकसान क्या है इस चीज से? जब उसके नुकसान का गहराई से चिंतन करेंगे तो वैराग्य आएगा। फायदा क्या है? बहुत कम। चलो फायदा है परंतु रिस्क बेनिफिट रेशियो, फायदा इतना है नुकसान इतना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक संबंध है, वो संबंध बंधन बन चुका है, व्यक्ति व्यक्ति का, स्त्री का पुरुष का, पुरुष का पुरुष का, स्त्री का स्त्री का, कोई भी कॉम्बिनेशन। परंतु ईश्वरीय सेवा में वो संबंध ही बाधा हो सकता है, और हम उसको सोच रहे हैं कि ये तो इससे सेवा भी हो रही है, परंतु सेवा इतनी, नुकसान इतना, सेवा इतनी, हलचल इतनी, तो कंटिन्यू करना है या बंद करना है, ये अपना निर्णय है। सेवा है, फायदा इतना है, कोई व्यक्ति है जिसके चिंतन से हमें बहुत मदद मिलती है और हम उसके साथ डिस्कस करते, परंतु वही व्यक्ति हमारे बंधन का कारण है, तो बंधन स्वीकार है या चिंतन जो इतना मिल रहा है, नए विचार तो एक दो मिल रहे हैं, हो सकता है वो बंधन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्ट है, उसमें फोन कॉल्स है, उसमें बातें है, उसमें ज्ञान के अलावा बाहर की बातें भी है, फिर बंधन इतना बन रहा है, चिंतन इतना मिल रहा है, या ज्ञान की चर्चा इतनी हो रही है, या उस संबंध से इतनी सेवा हो रही है, क्योंकि सहयोगी है, सहयोग करता है, गाड़ी देता है, उसके पास बैठ के हम कहीं जाते हैं, सेवा हो रही है, परंतु वो बदला भी लेता है उतना ही। जमीन तो दी परंतु बदला भी लेता है उतना ही, क्योंकि खाली सहयोगी है वो व्यक्ति। जमीन दे दी है बहुत बड़ी रिट्रीट सेंटर के लिए, परंतु सताता भी उतना ही है, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर। तो नुकसान फायदा के बारे में सोचना। तीसरा, प्राप्ति क्या क्या है? तीसरा, वैसा कहने से अच्छा, जब कुछ बड़ा मिल जाता है तो छोटा अपने आप छूट जाता है, उस बड़े बड़े की तलाश, हमेशा जो उदाहरण देते हैं हम लड्डू का, छोटा बच्चे को दो लड्डू दिए, छोटा और बड़ा, कौन सा लिया? दो दोनों भी लेने वाले हो सकते हैं, पर यूजुअली बड़ा लेगा वो। तो इसका मतलब ये नहीं उसने छोटे को छोड़ दिया, त्याग किया, उसको बड़ा मिल गया, छोटा अपने आप छूट गया। तो बड़े से अपने आप को भरना, प्राप्तियों से अपने आप को भरना, श्रेष्ठ संकल्पों से अपने आप को भरना, तो वो जो छोटे संकल्प, शूद्र संकल्प, नीच संकल्प है, वो स्वतः ही छूट जाएंगे। चौथा, समय की पहचान। समय कौन सा है? अगर अभी नहीं बनेंगे तो फिर कब करेंगे? टाइम पर नहीं होगा ये काम। वैराग्य बहुत सूक्ष्म चीज है, निरंतर अवस्था है वैराग्य की। ऐसा नहीं कि टाइम आएगा तो हम फटाफट सब छोड़ देंगे, फिर तो और याद आएगा, फिर बहुत पीड़ा होगी, हृदय विदीर्ण होगा छोड़ते समय वस्तुओं को। जब समय कहेगा छोड़ो, इसके लिए छोड़ना अर्थात वो भी नहीं कि छोड़ दिया, मन से उनको छोड़ देना, मन में उस वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसको खत्म कर देना। और अगला, अपने कर्तव्य को बार बार स्मरण करना। यहाँ क्या सुना अभी, क्या पढ़ा, क्या कहा अपना, कि ऐसे समय पर मेरा क्या कर्तव्य है। जैसे एक सिंगर होता है, ठीक है, उसको गाना होता है, दिन रात वो प्रैक्टिस करता है, क्योंकि सब कुछ उसका उसके ऊपर निर्भर है। वो ऐसी कोई चीज नहीं खा लेगा। खाने से पहले हमारे पास एक डॉक्टर थे जो कि गायक थे, तो वो सुबह से लेकर अगर उसको शाम को गाना है, कुछ बिल्कुल इधर कुछ नहीं खाएगा, वो इधर सब बनेगा, आइसक्रीम बनेगा, ये बनेगा, कुछ नहीं, हाथ ही नहीं लगाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है उसका सारा कुछ गाने पर है। आइसक्रीम खा लेगा सुबह तो गला का क्या होगा, कुछ और खा लेगा इधर उधर का तो क्या होगा। इसके लिए बहुत ध्यान रखता था तो, और अपने कमरे में रात भर प्रैक्टिस करते रहता था गाने की। तो इतनी प्रैक्टिस चाहिए। इसके पहले भी बताया था, एक बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ, उसने कहा था कि यदि मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो मेरे जो श्रोता है, ऑडियंस, उनको पता चल जाता है अगर मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो। अगर मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं, 2 दिन, तो संगीत के जो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट्स, उनको पता चल जाता है कि इसने प्रैक्टिस नहीं किया। यदि मैं 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो मेरे जो शिष्य है उनको पता चल जाता है कि गुरुजी ने आज प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए इतनी सूक्ष्मता, संगीत की सूक्ष्मता, तो बाहर की, जैसे हम लोगों को तो सब संगीत अच्छा ही लगता है पर जो उसमें एक्सपर्ट होता है वो बता सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ, ये यहाँ पर थोड़ा, हमको तो गलत भी बोल दे तो हमको तो पता भी नहीं चलता है, पर जो संगीत में जो उसके अंदर है उसको पता चल जाता है। और वो कहता है यदि मैं 1 पल के लिए भी, अगर 1 घंटे के लिए भी अगर प्रैक्टिस न करूं तो मुझे खुद को पता चल जाता है, मुझे सुबह ही खुद सुना सुना लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरों को तो पता भी नहीं चलेगा, दूसरों को पता भी नहीं चलेगा, परंतु मुझे खुद पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है। ठीक है, कहां थे? कर्तव्य को याद करना। अगला, लक्ष्य कर्तव्य एक ही है। और वैराग्य के लिए क्या किया जाए? दोष दृष्टि, संसार के सुखों में दोष दृष्टि, संसार के भोगों में दोष दृष्टि, संसार की आसक्तियों में दोष दृष्टि, दोष से भरे हैं, तब तो वैराग्य आएगा। एवर्शन थेरेपी कहते हैं उसको, घृणा। एक तो हम उसका कर रहे हैं कि क्या क्या मिला, परंतु साथ साथ उनके प्रति जो मुरलियों में आता है, ये संसार, छिछी सड़ी हुई दुनिया, पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, तमोप्रधान दुनिया, विषय वैतरणी नदी, कुंभी पार्क, नर्क, खारा चैनल, कीड़े पड़े हुए तुम शरीर में, इस शरीर से क्या प्यार करते हो ऐसे ऐसे शब्द बाबा ने प्रयोग किए। मरी पड़ी है दुनिया, कब्र दाखिल है, कब्रस्थान है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं है, ये चलते फिरती लाशें है, ये सब, ये क्या है? घृणा संसार के प्रति ये वैराग का भाव इससे भी प्रकट होता है। इसको कहते हैं एवर्शन थेरेपी। जैसे किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो वो स्मोकिंग के प्रति घृणा उत्पन्न करेगा धीरे धीरे, मन ही मन मन ही मन। वैसे ये संसार एक तरफ है। अब इस संसार से वैराग, तो इस संसार से भी क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म मन ही मन। आसक्ति बहुत गहरे तलों पर है, इसके लिए एक काम कर दिया और हो गया वैराग आ गया नहीं, मल्टी टास्क हर अलग अलग तलों पर काम करना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल वर्क है ये, मल्टी लेवल पर अनेक परतों पर आक्रमण करना पड़ेगा। एक परत पर आक्रमण कर दिया से काम नहीं होगा कि प्राप्ति हमें भगवान मिला। स्वयं भगवान तुमको पढ़ाते हैं, बाप तुम्हारे सम्मुख बैठा है, ये इसके साथ और भी कुछ चाहिए? वो जो संसार है, वो जो खींच रहा है, वो जो आसक्ति वाला है, वो उसके प्रति वैराग। तो घृणा, विवेकानंद ने एक जगह कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। मुझे इस संसार से घृणा है, मुझे इस संसार से नफरत है। ये संसार जो कि स्वप्न है, ये संसार जो कि नाइटमेयर दुस्वप्न है, यहां पर कोई भी सच्चा नहीं है। चेहरे जो है फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, चेहरे तो बहुत अच्छे हैं, परंतु दिल जो है, हृदय जो है, खोटे है। सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, बाजार लगा हुआ है यहां पर, केवल सब कुछ बिक रहा है यहां पर, ऐसा ये संसार। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स। ये सूक्ष्म इस संसार के प्रति, नहीं तो संसार तो खींचने के लिए तैयार ही बैठा है। और भी कुछ वैराग के लिए, जो भी दिख रहा है सब कुछ नष्ट होने वाला है। एक तो अभी जो है वही अनित्य है, पर जो है वो समाप्त हो जाने वाला है। मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगा, मौत सामने खड़ा है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। ये तुम्हारे दुख तो कुछ भी नहीं है, अभी छुटपुट बड़े बड़े दुख आएंगे। और क्या बोला, तो ये सब होने वाला है, ऐसा सब होगा। मच्छरों सदृश टिड्डियों सदृश सरसों मिसल फिर जाएंगे सारी दुनिया। फिर दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर अपने गुरु से जाकर कहता है, वो देखता है एक स्त्री, वो क्या कहता है उसको, चक्की चला रही है, और वो सोचता है कि संसार में भी तो यही हो रहा है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, सब मर रहे हैं संसार में, क्या किया जाए? वो गुरु को जाके पूछता है, गुरु कहते हैं सब नहीं मर रहे, वो जो बीच का होता है ना डंडा, हाँ क्या कहते हैं, थोड़ी, उसको कुछ कुछ चिपक जाते हैं, वो नहीं पिसते, वो है सदगुरु, तुम उसको चिपक जाओ, तुम नहीं पिसोगे। तो दुखी हो जाता है वो देखकर, सब पिस रहे हैं संसार में। इसलिए एक तो वो, और लास्ट कोई और पॉइंट वैराग के लिए, वैराग से प्राप्तियां क्या होती है,
लोगों ने प्राप्ति
की, उनको देखो, और जो वैरागी है ऐसी आत्माओं का संग करो। कितना भी कोई वैरागी है परंतु भोगियों के संग में अगर चला जाए तो भोग के संस्कार बहुत जन्म जन्म के हैं। बड़े से बड़े वैरागी को घसीट कर सीधा भोग में ला लेंगे, इतना उसमें फोर्स है भोग में। और समय हो गया और एक लास्ट पॉइंट फिर पूरा करते हैं। और अच्छा, आठ ही हुए, दो बताओ और पीछे से। वैराग के लिए क्या किया जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार का दर्शन करना, देखना, जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, जरा में दुख, व्याधि में दुख, बीमारों को देखना, जाओ हॉस्पिटल में जाकर फूल लेकर, ये तो पूछेंगे यहाँ क्यों आए, हम देने आए थे, फल लेकर जाओ और दृश्य देखो जनरल वार्ड में क्या हाल है लोगों का। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में एक एक अस्पताल, एक एक वार्ड में एक एक बेड पर दो दो, कोई नीचे बैठा हुआ है, जगह नहीं है, वार्ड्स की खाली 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 नहीं है, डॉक्टर हड़ताल पर है, क्या हो रहा है मरीजों का, क्या हाल चल रहा है संसार के लोगों का, वो कैंसर के पेशेंट्स, वो डायलिसिस के पेशेंट्स, वो कोई देखने वाले नहीं है, माँ बाप बच्चे छोड़ के चले गए, कोई देखने नहीं आता है, छोड़ के चले जाते हैं, गलत एड्रेस दे के चले जाते और देखने भी नहीं आते, फोन नंबर भी गलत डाल के जाते। अब देख लो, तुम ही देख लो, जो होगा होगा, जब तक जिएगा तब तक रखो, मर गया तो हमको बताना भी मत। मरते हुए बूढ़े बूढ़े लोगों के बेटे आते हैं, साइन करा के भाग जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। हाँ, अपंग, कुष्ठ रोग, टीबी, हमारे पास एक हॉस्पिटल एक पेशेंट थी, बर्न 80% बर्न, उसके रिलेटिव आए, छोड़ के गए, बाद में कभी आए नहीं, 8 महीना तक थी, फिर शरीर छोड़ दिया, कोई देखने तक भी नहीं आया, कुछ नहीं। ऐसे सब है, ये सब देखेंगे तो वैराग आएगा, ये है वास्तविक वैराग, वो नहीं 14वीं का चांद या आफताब हो, ये वास्तविकता है। जर्जर होता हुआ शरीर, कीड़े पड़ते हुआ शरीर, कमजोर होता हुआ, कहाँ है सौंदर्य, कहाँ है, ये है। और देखो बूढ़ा वृद्धाश्रम, उसी शहर में है, बेटे रहते हैं बेटा बेटी बहू उसी शहर में रहते हैं और उसी शहर में वृद्धाश्रम में माँ बाप रह रहे हैं। ये जीवन है, इसको देखो तो वैराग आएगा। और कोई लास्ट पॉइंट? हाँ, बाप की श्रीमत है, वैराग धारण करो। शमशान में थोड़ा, एक बार हमने लिस्ट निकाली थी 10 जगहों की, ऐसी कहाँ कहाँ जाने से वैराग होता है, ऐसे टॉप वैराग पॉइंट्स वैराग पॉइंट्स तो एक बार निकाली थी उसकी लिस्ट। तो बाबा कह रहे शमशानी वैराग ना हो, परिस्थिति आए तब वैराग ना हो, हलचल हो तब वैराग ना हो, निरंतर ही वैराग की चिरंतन अवस्था। ठीक है, ओम शांति।